ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्ण। तो हमारे बीच में परम पूज्य जनमेश गौर कृष्णदास गोस्वामी महाराज उपस्थित हैं। महाराज के विषय में थोड़ा मैं संक्षिप्त परिचय देना चाहूंगा,
सब लोग जानते हैं।
हरे कृष्ण। महाराज ऐसे तो संन्यास से पहले भी इंटरनेशनल प्रचारक के रूप में देश विदेशों में कथा के लिए फेमस हैं। और जो हम लोग खास करके, खास मैं अगर इस स्वरूप में मैं जो दिखाई दे रहा हूँ, महाराज श्री की असीम कृपा है हमारे ऊपर। और महाराज का प्रचार हम लोगों के गाँव की तरफ कई सेंटर हैं, जहाँ महाराज स्वयं अपने सर पे वृंदावन से कंठी माला चंदन वगैरह खरीद करके और अपने सर पे ढो करके पहाड़ों पर जहाँ जहाँ प्रचार सेंटर है वहाँ महाराज पहुँचाते थे और सारे भक्तों को भगवत भक्ति में लगाने का इन्होंने अथक प्रयास किया। और महाराज की असीम कृपा रही कि आज महाराज इस रूप में भगवत कथा के रूप में कहने के योग्य हुए। और महाराज आज भी अपने बिजी शेड्यूल के होते हुए भी हम लोगों के आवेदन से, हम निवेदन से, रिक्वेस्ट से, प्रार्थना से महाराज यहाँ पंजाबी वाला आने के लिए मतलब कृपा किए। तो आप लोग महाराज श्री के मुखारविंद से श्रीमद भगवत कथा का श्रवण कीजिए। और मैं यही भगवत भक्तों से इच्छा रखता रहूं कि महाराज के लिए ऐसा आशीर्वाद वचन हम लोग भगवान से करें कि महाराज इसी प्रकार से भगवत कथा के रूप में सबको अपनी कृपा प्रदान करते रहे। हरे कृष्ण। श्री प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। कथा के बीच में बाधक जो मोबाइल है अपने मोबाइल को स्विच कर दीजिए, साइलेंट मोड में कर दीजिए और ध्यान पूर्वक कथा श्रवण कीजिए। हरे कृष्ण।
त्रिवर्गम न अतिकृष्ण भजेत गृह में भी अति यथा देशम यथा कालम जावत दैव उपपादितम। त्रिवर्गम नाति कृष्ण भजेत गृहमेध्यति यथा देशम यथा कालम जावदैवोपपादितम्। श्लोक याद कर लीजिए और इसको आत्मसात कर लीजिए, मतलब अपने प्रैक्टिकल जीवन में इसको अनुभव करते हुए चलिए, बहुत सुख मिलेगा, टेंशन भी खत्म हो जाएगा। त्रिवर्गम तीन सिद्धांत, धर्म अर्थ तथा काम। ना, नहीं अति कृष्ण कठिन प्रयत्न के द्वारा भजेता संपन्न करें, गृह मेधी घर गृहस्थी में जिनकी बुद्धि लगी है ऐसा व्यक्ति। अपि यद्पि यथा देशम स्थान के अनुसार, यथा कालम समय के अनुसार, जावत जो भी दैवा भगवत कृपा से उपपादितम प्राप्त होता है। सबसे पहले मैं आप सबको धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। कि आप श्री भगवान के विषय में, भागवत के विषय में सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। यह वास्तव में मानव जीवन का चरम परम लक्ष्य है कि व्यक्ति भगवान के विषय में सुने, भगवान के विषय में बोले और भगवान के विषय में स्मरण करे। इसी में मानव जीवन की सफलता है। तो आप लोग इस उत्तम कार्य के लिए उपस्थित हैं, इसके लिए हम धन्यवाद और श्री भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आपकी मति अपने लीला कथा में, अपने चरणों में लगाए रखें। और विशेष रूप से कृतज्ञता ज्ञापन करता हूं कि आप लोगों ने ऐसे पुनीत कार्य में मुझे लगाया, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। यह प्रसंग श्रीमद् भागवतम के एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रसंगों में है, जिसमें देवर्षि नारद गृहस्थ धर्म का वर्णन कर रहे हैं महाराज युधिष्ठिर के प्रश्न करने पर। यह सप्तम स्कंद के 14वां अध्याय है। मैं तो प्रायः गृहस्थों से कहता हूं कि महीना में 2 बार इसको पढ़ना चाहिए, कम से कम एकादशी के दिन इस अध्याय को। जब लोग बहुत उद्विग्न होते हैं, कहते हैं हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, कैसे भजन करें, तो हम कहते हैं कि भागवतम के सप्तम स्कंद के 14वां अध्याय महीना में 2 बार पढ़ना चाहिए। तो संयोग से यही अध्याय मिल गया है। तो श्रीमद् भागवतम 10 विषयों का वर्णन करता है, 10 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं भागवत के। भगवद गीता के 5 महत्वपूर्ण टॉपिक हैं, ईश्वर, जीव, काल, कर्म और प्रकृति। और श्रीमद् भागवतम के 10 टॉपिक हैं, सर्ग, विसर्ग, स्थान, पोषण, ऊति, मनवंतर, ईशानु कथा, निरोध, मुक्ति और आश्रय। 10 विषय है, 10 परिभाषिक है। संपूर्ण भागवत इन 10 विषयों का वर्णन करता है। तो सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि, भगवत सृष्टि, जिस सृष्टि के तत्वों का निर्माण भगवान करते हैं, जैसे पंच तत्व और महत्तत्व इत्यादि। और इसके बाद इन तत्वों को ब्रह्मा को देते हैं और ब्रह्मा जैसे वैज्ञानिक इन्हीं 8 तत्वों से केमिकल चेंजेज करके इतना विस्तार किया। और इसके बाद ब्रह्मा के सहयोगी प्रजापति और सारा मानव समाज अभी विस्तार में ही लगा है। इसको कहते हैं विशेष सर्ग, विसर्ग, सृष्टि का विस्तार। ब्रह्मा जी महत्तत्व के सहयोग से पेड़ पौधा बनाए, हम लोग फर्नीचर बना रहे हैं, घर मकान बना रहे हैं, विस्तार कर रहे हैं। तो सर्ग का अर्थ सृष्टि, विसर्ग का अर्थ सृष्टि का विस्तार। स्थान का अर्थ है ब्रह्मांड का भौगोलिक अध्ययन, कहाँ क्या है, पर्वत, पहाड़, नदी, ये सब का वर्णन हुआ है भागवत में। सर्ग विसर्ग स्थान, पोषण, भगवत कृपा से संपूर्ण मानव समाज, संपूर्ण जीव का पोषण होता है। तो पोषण 2 प्रकार का है, एक जनरल पोषण और एक स्पेशल पोषण। एक सामान्य पोषण, चाहे वास्तविक हो, नास्तिक हो, निंदक हो, भक्त हो, सबके लिए ऑक्सीजन का सप्लाई किया जाएगा जीने के लिए, सबको पीने का पानी, सबको धरती में अन्न फल की व्यवस्था, इसको पोषण कहते हैं। और फिर अपने भक्तों के प्रति भगवान बड़े पक्षपाती हैं, उन पर क्लेम भी है कि भक्तों का पक्ष लेते हैं, जैसे अजामिल, इंद्र आदि भक्तों का पक्ष लिए। तो ये सब भागवत में वर्णन है। प्रारंभ के प्रथम और द्वितीय, तृतीय स्कंद में सर्ग और विसर्ग का वर्णन है, 4वें स्कंद तक। 5वें स्कंद में स्थान का वर्णन है, भूगोल का। 6वें स्कंद में पोषण का वर्णन है और 7वें स्कंद में ऊति का वर्णन है। यह मैं बताना चाहता हूं। ऊति क्या है? उतय कर्म वासना, उति का अर्थ है जीव के अंदर कुछ प्राप्त करने की जो लालसा है, करना चाहता है, कुछ चाहता है, उसकी चाह को उति कहते हैं, उसके डिजायर को, उसके कामना को उति कहते हैं। तो उति तीन प्रकार का है, एक सद वासना, एक असद वासना और तीसरा मिक्स वासना। सद वासना का अर्थ है भगवत वासना, भगवान के साथ रहने की इच्छा, भगवान के विषय में सुनने की इच्छा, भगवान की सेवा करने की इच्छा, इसके लिए भी प्लानिंग किया जाता है कैसे किया जाए, दिन रात सोचते हैं क्या करना है, तो इसको सद वासना कहते हैं। और भगवान नहीं चाहिए, बाकी सब कुछ चाहिए, सारा संसार के भोग चाहिए लेकिन भगवान से कोई मतलब नहीं, उसको कहते हैं असद वासना। सद वासना मतलब शाश्वत परमानेंट नित्य सनातन जैव और भागवत भगवत धर्म, ये सद वासना है। और असद वासना संसारिक भोगों की लालसा, ये असद वासना है जो टेम्पररी है, अनित्य है, एक दिन समाप्त होगा, लेकिन मूर्खता बस यही चाहिए, इसी के लिए मरते रहते हैं। जो हमारे साथ नहीं रहेगा उसके लिए बेचैन रहते हैं, यह है असद वासना। और तीसरा है कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, दोनों चाहिए, मिक्स वासना। तो सप्तम स्कंद में सबके लिए पांच पांच अध्याय दिया गया है, 15 अध्याय में सप्तम स्कंद है। तो सप्तम स्कंद में असद वासना का नेतृत्व करते हुए हिरण्यकश्यप के डिजायर और उसके भावनाओं का वर्णन 5 अध्याय में हुआ है। इसके बाद उसी हिरण्यकश्यप के पुत्र प्रहलाद के दिव्य कृष्ण भावना का वर्णन, भगवत वासना का वर्णन 5 अध्याय में हुआ है, 6 से 10 तक। और इसके बाद हम लोग जैसे संसारिक, कुछ इधर भी रहा कुछ उधर भी रहा, उसके लिए 5 अध्याय में महाराज युधिष्ठिर जिज्ञासा करते हैं, वो है वर्णाश्रम धर्म, ब्रह्मचार्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये सब वर्णाश्रम नैमित्तिक धर्म है, नित्य धर्म नहीं है, ये शाश्वत धर्म नहीं है, टेम्पररी धर्म है। किसी मजबूरी और परिस्थिति में जिस धर्म का पालन करना होता है उसको नैमित्तिक धर्म कहते हैं, ये मजबूरी में, जैसे छोटे बच्चे स्कूल में पढ़ने जाते हैं, उनको वास्ता पुस्तक लाद दिया जाता है, बेचारे ढोते हैं, नहीं चाहते हैं ढोना, खेलना चाहते हैं, लेकिन अब जाना पड़ता है स्कूल, स्कूल के टास्क दिया जाता है, उसको पूरा करना पड़ता है। और वही बच्चे स्कूल पास कर गए तो धर्म खत्म, अगर टीचर हो गए तो धर्म बदल गया, अब उनको स्कूल की जिम्मेवारी नहीं है, टेम्पररी धर्म है। उसी प्रकार ब्रह्मचर्य धर्म, जब तक ब्रह्मचारी हैं तो एक विशेष नियमों का पालन करना पड़ता है, स्त्रियों से कोई संपर्क नहीं, और जैन गृहस्थ बनते हैं चेंज हो जाता है, टेम्पररी है। उसी प्रकार वानप्रस्थ और संन्यास भी, वैसे ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि, ये सारे धर्म टेम्पररी है। धर्म का अर्थ प्रभुपाद कहते हैं, धर्म का मतलब ड्यूटी, कर्तव्य, धर्म का मतलब जो धारण करता है जीव को, जिसके बिना जीव रह ही नहीं सकता, जिसके कारण जीवन चलता है वो धर्म है। धर्म के अनेक परिभाषाएं हैं, और एक होता है नेचुरल धर्म, जिसको नित्य धर्म, शाश्वत धर्म कहते हैं, उसके बिना उसका कोई अस्तित्व नहीं। जैसे अग्नि का धर्म है नेचुरल धर्म, दाहिका, जलाना, अगर उसमें दाहिका शक्ति हटा दिया जाए आग को, तो फिर वो आग रहेगा ही नहीं, राख हो जाएगा या दूसरा कुछ। जैसे कस्तूरी का धर्म है सुगंध, कस्तूरी से सुगंध हटा दिया जाए तो कोई मतलब नहीं। मिर्चा का धर्म है तीताई, तीता लगना, कभी कभी बिना तीता वाला भी मिर्चा मिल जाता है, पालक के डंठल की तरह, तो वास्तव में मिर्चा का आकार है, मिर्चा नहीं है, तीता लगना चाहिए, चीनी को मीठा लगना चाहिए, आग को दाही का जलाना चाहिए, यह उसकी नेचुरल धर्म है जिसको वस्तु शक्ति कहते हैं। उसी प्रकार जीव का भी नेचुरल धर्म है। जीव का नेचुरल धर्म है वह कृष्ण का दास है, जीवरे स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। वह भगवान की सेवा करना, भगवान की भक्ति करना, यह जीव का सनातन धर्म है, नित्य धर्म है। और यह नित्य धर्म काल और परिस्थिति से बदलता नहीं है, टेम्पररी नहीं है। माता के गर्भ में भी इस धर्म का पालन किया जा सकता है, बचपन में भी, जवानी में भी, बुढ़ापा में भी, मनुष्य शरीर में भी, बंदर के शरीर में भी, पक्षी के शरीर में भी, स्वर्ग में भी, भारत में, अमेरिका में, इंग्लैंड में, बैकुंठ में, अनादि काल से अनंत काल तक जिस धर्म के बिना जीव की कोई सत्ता नहीं, उसको नित्य धर्म कहते हैं। प्रहलाद गर्भ में इस धर्म का पालन किए, देवर्षि नारद के मुख से सुने, और ध्रुव प्रहलाद प्रसिद्ध है, बचपन में किए, बुढ़ापे में कुछ लोग किए, जवानी में किए, और यह बंदर के शरीर में भी हनुमान, अंगद, सुग्रीव आदि भजन किए, इस धर्म का पालन किए। गरुड़ जी पक्षी के शरीर में इस धर्म का पालन करते हैं। तो यह धर्म सभी जीवों के साथ है, इसमें कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, स्त्री, पुरुष, कोई बंधन नहीं, काला गोरा कुछ नहीं, सबके साथ जो एक ही धर्म लागू होता है उसको कहते हैं नित्य धर्म। और इस धर्म के पालन के लिए ही जीवन है, इसीलिए भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज। बहुत धर्म है तो उन धर्मों को छोड़ो, मेरे शरण में आ जाओ। मेरे शरण में आने के बाद सभी प्रकार के सुख प्राप्त हो जाएंगे। तो यह नित्य धर्म है, नित्य धर्म के लिए ही और अनुसंगित सारे धर्म है। तो यहां देवर्षि नारद महाराज युधिष्ठिर के प्रश्न का उत्तर देते हुए बहुत सुंदर गृहस्थ धर्म का वर्णन करते हैं। सारे धर्मों का लक्ष्य कृष्ण प्रेम है, कृष्ण भक्ति है। भगवान चैतन्य महाप्रभु तो चौंका देने वाली बात कहते हैं सनातन गोस्वामी से, एकदम पहली बार मैं पढ़ा तो एकदम चकित हो गया। बहुत देर तक मेरे चित्त पर असर रहा, क्या कह दिए। कहते हैं कि चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, चार वर्ण आश्रम का पालन फर्स्ट क्लास करे, ब्रह्मचर्य का पालन, गृहस्थी का पालन, वानप्रस्थी का और संन्यास का, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सभी वर्ण और आश्रम वाले अपने धर्म का ठीक से पालन करें, उनके जीवन में एक माइनस पॉइंट रह गया कि वो कृष्ण का भजन नहीं किया और बाकी सब फर्स्ट क्लास किया। तो चारी वर्णाश्रमी यदि कृष्ण नहीं भजे, स्वधर्म करियाऊ से ही रौरव पड़ी मजे, अपने धर्म का फर्स्ट क्लास पालन करने के बाद भी नरक में जाएगा। क्यों? क्यों कृष्ण का भजन नहीं किया, एक कॉमन है। अब नारद जी कहते हैं अपने भक्ति सूत्र में कि अगर कोई व्यक्ति ठीक से कृष्ण का भजन कर लिया तो अन्य धर्म और तपस्या की क्या जरूरत, दूसरे धर्मों की क्या आवश्यकता, कोई जरूरत नहीं है अन्य धर्मों का पालन करने का। आज यदि कृष्ण का भक्ति नहीं कर पाया, नहीं कृष्ण का प्रेम उत्पन्न कर पाया, तो फिर उस तपस्या से क्या फायदा। कर लिया तब भी कोई जरूरत नहीं, नहीं कर पाया तो भी कोई जरूरत नहीं। अगर कृष्ण प्रेम प्राप्त कर लिया तो अन्य धर्मों की कोई जरूरत नहीं, अगर कृष्ण प्रेम नहीं प्राप्त कर लिया तो फिर भी उसकी कोई जरूरत नहीं, क्या फायदा मिला, समय ही केवल। तो बहुत सुंदर प्रश्न है। इस अध्याय के पहले 13वां अध्याय में जति धर्म का वर्णन हुआ है, सन्यासी के धर्म का। और प्रहलाद महाराज घूमते हुए एक पर्वत के तलहटी में धूल धूसरित अवस्था में जमीन पर बैठा हुआ, बिना बेड के, बिना आसन के, एक प्रसन्न मुद्रा में सन्यासी को देखे जिसके चेहरे पर तेज था, कोई टेंशनबाजी नहीं। प्रहलाद महाराज रथ से जा रहे थे, उतर गए। देखिए कौन है, जाकर निकट में प्रणाम किए और कहे हे भगवान आप कौन हैं? इतना सुंदर चेहरा, स्वस्थ शरीर और चेहरे पर प्रसन्नता, आपको देखने से ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं करते हैं, निरुद्योगी हैं, आप कोई बिजनेस नहीं, कोई काम धंधा नहीं करते, ऐसा लगता है। लेकिन सिद्धांत यह है कि जो काम नहीं करेगा उसके पास पैसा नहीं मिलेगा, जिसके पास पैसा नहीं है वो खा पी नहीं सकता, और जो खाएगा पिएगा नहीं वो मोटा नहीं होगा। चाहे कितना हो, झूठ बोले खाकर ही लोग मोटे हुए हैं, कहते हैं कि ना, कहते हैं हम नहीं खाते हैं, लेकिन वो खाते हैं, खाकर मोटे हुए हैं। जब मोटा हो गए हैं तब सावधान होते हैं, पहले तो खा लिए हैं, भले बाद में दिमाग में आया कि अरे ज्यादा खाने से गड़बड़ हो रहा है, तब अब छोड़ दिए, लेकिन वो पहले खा चुके हैं। तो खाते हैं बिना पैसा के तो कोई खा नहीं सकता, और पैसा ऐसे मिलता नहीं, काम करना पड़ता है। लेकिन आपके व्यवहार से आप में निरुद्योग दिख रहा है, और लेकिन आपके जो स्टाइल है उसे लगता है कि आप कोई काम धंधा नहीं करते हैं, काम धंधा नहीं करते हैं, और शरीर देखने से लगता है आप खा पी कर ठीक ठाक हुए हैं। तब कहते हैं कि देखो प्रहलाद, मैं सबसे बात नहीं करता, लेकिन तुम भगवान के अत्यंत प्रिय हो, इसलिए मुझको मुंह खोलना पड़ गया। मैं बतला रहा हूं अपनी स्थिति। वो कौन थे? भगवान दत्तात्रेय। बोलने के बिना कुछ लोग छटपटाते हैं, उसमें से नहीं थे, बहुत रेयर बोलते थे। तो कहे तुम भगवान के प्रिय हो इसलिए बोल रहा हूं, अपनी स्थिति बताए। मैं जानता हूं लोगों का अलग अलग स्वभाव होता है, और अपने स्वभाव के अनुसार लोग व्यवहार करते हैं, और उस व्यवहार से कोई गाली देता है, कोई सम्मान करता है, कभी कभी मुझको लोग हाथी पर चढ़ा लेते हैं, रथ पर बिठा लेते हैं, माला भी डालते हैं, मखमली आसन पर बैठाते हैं, दिन में 3 बार खाने को मिल जाता है, और कभी कभी 20 दिन कुछ नहीं मिलता, जमीन पर पड़ा रहता हूँ। कभी लोग गाली भी देते हैं, ढेला भी मार देते हैं, ढोंगी पाखंडी भी कहते हैं, लेकिन मैं किसी से प्रभावित नहीं होता, क्योंकि मैं इस संसार में अनेक गुरु बनाया हूँ। जहाँ जाता हूँ वहीं मुझे गुरु मिल जाते हैं, देख देख कर शिक्षा लिया हूँ। तो बहुत सारी बातें कहे, अपने कुछ गुरुओं का वर्णन किए विस्तार से, तो एकादश स्कंद में 24 गुरुओं की कथा है। तो निश्चिंत जीवन जीता हूं, क्योंकि जीवन भजन के लिए है, खाने पीने मौज मस्ती के लिए नहीं है, मैं जान चुका हूं। तो मुझे किसी से कुछ लेना देना नहीं है, किसी के व्यवहार से मैं प्रभावित नहीं होता। कोई माला डाले चाहे गाली दे, मेरे लिए समान है। कोई 3 बार खिला दे तो मैं समझता हूं मेरे कर्मों का फल है, नहीं मिला तो जानता हूं मेरे कर्मों का फल है। इतना सुंदर उपदेश किए कि महाराज युधिष्ठिर सुनकर चकित हो गए। तो महाराज युधिष्ठिर क्या कहते हैं इस 10वां अध्याय में, गृहस्थ एतम पदवी विदिना जैन चांद जैसा याया देव ऋषे ब्रूही मा दिशो गृह मूड भी। कहते हैं देव ऋषे, देवर से आप कृपा करके बताइए कि घर गृहस्थी में जिनकी बुद्धि फंसी हुई है, ऐसे गृहस्थ लोग इस स्तर को कैसे प्राप्त करेंगे? वो निकल ही नहीं पाते हैं बेचारे, उनको इतना काम धंधा, इतना विस्तार जाल है कि वो न दुकान छोड़ सकते, न मकान छोड़ सकते, न स्त्री न बच्चे न रिलेटिव, बहुत ज्यादा जाल हो गया है। उन बेचारों को यह स्थान कैसे मिल सकता है, और वो भी आसानी से अंजसा? ऐसा मत नहीं बतला दीजिएगा उपाय कि बेचारा मर जाए उसको करते करते, आसानी से बतलाइए। मात दिशो, मेरे जैसे गृह मूड भी, घर गृहस्थी में जिनकी बुद्धि फंसी है उनको क्या करना चाहिए? तब नारद जी कहते हैं कि गृह स्वस्थितो राजन क्रिया कुर्वन यथोचितम। आप लोग इसको सुन चुके हैं, मैं केवल लिंक ले जा रहा हूं। वहां वासुदेवार परम साक्षात उपासित महामुनि, घर गृहस्थी में रहे हे राजन, जो उचित काम है उसको करे, कोई दिक्कत नहीं। नौका जल में रहता है, यह नेचुरल है, स्वाभाविक है, नौका को जल में ही रहना चाहिए, लेकिन नौका के बीच में जल नहीं रहना चाहिए। यह सिद्धांत रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे, नौका जल मध्य था के कोई क्षति नहीं, कोई क्षति नहीं, वो तो जल में रहेगा ही, लेकिन नौकार मध्य जल ना अच्छे, नौका के बीच में जल नहीं रहना चाहिए। सही रकम ठीक उसी प्रकार साधक संसार मध्य अच्छे कोई क्षति नहीं, साधकेर मध्य संसार में अच्छे, साधक के भीतर संसार नहीं होना चाहिए। तो वासुदेवार्पणम साक्षात, वह भगवान वासुदेव को अर्पित करते हुए कहे, मालिक न बने, नौकर बनकर रहे, सारा संसार भगवान का है, बनाने वाला कहता भी है चिल्ला चिल्ला कर भगवद गीता में, फिर भी नहीं पता चल रहा है, तब तो दंड मिलेगा ना। अहम सर्वस्य प्रभव मत्तः सर्वम प्रवर्तते, सारा जगत मुझसे उत्पन्न हुआ है, मैं बनाने वाला हूँ। इति मत्वा, इसको जानने के बाद, इति मत्वा भजन्ते माम बुद्धा भाव समन्विता, इस बात को जानकर बुद्धिमान लोग मेरा भजन करते हैं, डल माइंडेड बोका लोग समझते ही नहीं। इनडायरेक्ट भगवान नहीं भजन करने वाले को मूर्ख कह रहे हैं, बुद्धिमान लोग इस बात को जानकर मेरा भजन करते हैं, मूर्ख लोग नहीं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांतिमिच्छति, संसार में सुख शांति चाहते हो तो तीन बात जानना पड़ेगा, सारे जग तपस्या का भोक्ता मैं हूं, आप कैसे हैं, हम कमाते हैं खाने वाले आप हैं, कहते हाँ, क्यों, सर्वलोक महेश्वरम, सारे जगत में जो कुछ भी प्राप्त कर रहे हो वो मेरा है, सारे लोगों का स्वामी मैं हूं, ईश्वर हूं, ऐसे काम नहीं चलेगा मनमाना कर लोगे, शासन भी करना जानता हूं, जमराज को लगा कर रखा हूं, कंट्रोलर हूं। अच्छा अब ब्लैकमेल कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं, कहते नहीं नहीं असलियत कह रहा हूं, सुहृदम सर्वभूतानाम, वास्तव में मैं सभी जीवों का एकमात्र हितैषी हूं, सुहृद हूं, हमसे बढ़कर कोई सौहार्द नहीं कर सकता, माता पिता भाई बंधु भी नहीं, नहीं कर सकते। बिहार में कहावत है, भक्त लोग कहते हैं प्रसिद्ध, राम नियन हित दूसर नाही, होई दो करहिं तो वैसा नाही, राम जैसा कोई दूसरा हित ऐसे नहीं, अगर होएगा हो सकता है हित ऐसे हो, लेकिन उनके जैसा नहीं हो सकता है। जन्म देने वाली जननी अपने बच्चे पर नाराज होकर बोलना बंद कर दे, उसको भोजन देना बंद कर दे, बाप नाराज होकर बेटे को घर से निकाल दे, लेकिन कृष्ण कभी जीव से ऐसा दुराव नहीं कर सकते। चाहे वो नलायक हो, अपने कर्मों के कारण सुअर शरीर में चला गया है, फिर भी परमात्मा रूप से साथ साथ रहते हैं, पीछे पीछे चलते हैं, बेटा समझ जा, समझाने की कोशिश करते हैं, भगवद गीता का उपदेश देते हैं, साधुओं के माध्यम से समझाते हैं, हृदय में भी प्रेरणा देते हैं, लेकिन वो नलायक नहीं मानता है तो उसके पीछे पीछे रहते हैं, वो नाराज नहीं होते, वो ऑक्सीजन देना बंद नहीं करते। हो सकता है पिताजी घर से निकाल दें, अपने प्रॉपर्टी में हिस्सा न दें, लेकिन वह नहीं नाराज। भाई नाराज होकर अलग हो सकता है, पत्नी डाइवोर्स ले सकती है, लेकिन भगवान किसी जीव से अलग नहीं हो सकते, राम नियन हित दूसर नाही, यह है उनका सौहार्द। इसलिए उनको अर्पित करके सारा काम उनको अर्पित करना चाहिए, नहीं अर्पित करने पर अपने भोक्ता मानने में क्या टेंशन है, डंडा पड़ेगा। बनारस के सब्जी मार्केट में मैं देखा हूं अपने आंखों से, बहुत सांड घूमते रहते हैं बनारस के गलियों में, बेचारे जाते हैं हरा हरा पालक देखकर मुंह लगाते हैं तो दुकानदार डंडा रखा है तुरंत मारता है। सांड से क्या गलती हो गई कि वो अपने को भोक्ता मान लिया, इसलिए पिटाता है। उसी प्रकार कृष्ण भूली से जीव अनादिर बहिर्मुख, अतएव माया तारे दे संसार दुख, कबू स्वर्गे उठाए कबू नरके डुबाए, दंड जन राजा जन नदी तिछवाए, यह है। तब वो क्या करे कि सारे कर्मों को भगवान का अर्पण करके कोशिश करे, गृहस्थों का धर्म है, सन्यासियों का नहीं वर्णन करे, श्रीमन भगवतो विश्रम अवतार कथा मृतम सत्य धामो जथा कालम उपशांता जनावृता सत्संगासन कई संगम आत्म जाय आत्म जा दिशो विमोचन मुच्छ माने से स्वयं स्वप्नवत उत्थित उत्थित सपनवत उत्थित कह रहे हैं कि वह कोशिश करे कि साधु पुरुषों की संगति में जाए अथवा साधु को अपने पास बुलावे श्रद्धा पूर्वक उनके मुख से कृष्ण कथा सुने और इसके लिए प्रयास करे जिसमें भगवान के अवतार और भगवान की लीला की कथा कही गई है उन कथाओं को सुने। यहाँ नारद जी को जगह और चांस नहीं छोड़ रहे हैं कि अपने मन से जो मन करे वही कह दे, बस वही कृष्ण कथा है। अवतार कथा शुभम कहते हैं, अवतार कथा मृतम, भगवान की अवतार लीलाओं की चर्चा करे और उसको श्रद्धा के साथ सुने और धीरे धीरे प्रयास क्या करे कि अपने स्त्री अपने बच्चे संतान से विरक्त रहे। कैसे विरक्त हो? जैसे रात में स्वप्न देखते हैं और नींद टूटने के बाद स्वप्न के घटनाओं से विरक्त हो जाते हैं, वैसे वो दो चार मिनट का स्वप्न होता है, थोड़ा 10-20 साल का है, लेकिन स्वप्न ही है। ए स्त्री बच्चे इनसे आपका संबंध नहीं है जिसको आप अपना मानकर चल रहे हो। स्वप्नवत उठ जाए, जग जाए और सबको भूल जाए। यावदर्थ मुपासीनो देहे गेहे च पंडिता विरक्तो रक्तवत तत्व निलोके नरताम नसेत। अगर महाराज युधिष्ठिर पूछ दे कि इसी तरह न्यूट्रल अगर हो जाएंगे तो कैसे व्यवहार चलेगा, लड़के लड़की का विवाह करना है, बहुत काम है, तो कहते हैं कि हाँ जो जैसा कहता है उसको अनासक्त भाव से स्वीकार कर ले। यावदर्थ मुपासीनो, जितना से काम चल सके उतना जीविका का साधन जुटा ले, ज्यादा नहीं। देहे गेहे च पंडिता, वही व्यक्ति वास्तव में विद्वान है जो जरूरत पर आवश्यकता भर अर्जन करता है, काम करता है जितना से पेट भर जाए, कपड़ा मिल जाए, रहने के लिए छाया मिल जाए बस। और विरक्तो रक्तवत तत्र, विरक्त रहे लेकिन रक्तवत आसक्त जैसा दिखे, दिखावा करे लोगों से कि हम आसक्त है समाज में, नीलोके नरताम निषेध, इस तरह मनुष्य समाज में व्यवहार करे। ये सब आप लोग सुन चुके हैं। तो कहते हैं सबसे दुनिया वालों से ना जिनका कोई संबंध नहीं, अपने निकटी निकटतम संबंधियों के साथ भी यही व्यवहार करना है। केवल फॉर्मैलिटी ओरिजिनैलिटी तो केवल राधिका रमण के चरणों में है, यहां आने में ओरिजिनैलिटी है। ज्ञातयः पितरौ पुत्रा भ्रातरः सुहृदौ परे जद बदंती यदिच्छन्ति चानुमोदेत निर्ममम। गोतिया परिवार से जिनसे हमारा संबंध है, ज्ञातयः जिनको कहते हैं, जिनके मरने पर हमको सूतक लग जाता है, जल दान देना पड़ता है, वो ज्ञाती है, वो गोतिया लोग, ऐसे लोगों के साथ, पितरौ माता पिता के साथ, पुत्रा बेटा बेटी के साथ, भ्रातर भाइयों के साथ, सुहृद जो संगी साथी फ्रेंड मित्र हैं, या पर है और भी बाकी दुनियादारी से कैसा व्यवहार करना चाहिए। जद बदंती जदिच्छंती, जो बोलते हैं जो चाहते हैं चानुमोदित, उनका अनुमोदन करते हैं, हाँ ठीक है ठीक है, लेकिन निर्मम, लेकिन उनमें आसक्ति न रखे। हमारे बेटे का बर्थडे है, आइए ना, ठीक है आएंगे, पहले ही प्लान कर दिए, नहीं जाना है टाइम बर्बाद करने, टाइम बर्बाद करने नहीं जाना है, अरे मैं तो भूल गया, कोई बात नहीं। झूठ बोलने में, झूठ साज की परिभाषा जानते हैं क्या है अध्यात्म जगत में? जिन बातों से मति कृष्ण में लगे वो साज, और जिन बातों में से मति कृष्ण से विभेद हो जाए वो झूठ, और कोई परिभाषा नहीं है। बाकी तो इस संसार में दिन रात झूठ ही बोलते हैं ना, साच कितना लोग बोलते हैं, सत्य बहुत कम लोग बोलते हैं। महाभारत में इन सब परिभाषाओं को बतलाया गया है। जब कर्ण का रथ फंस गया और भगवान कहे अर्जुन को मारो, इसी समय वो रथ निकाल रहा था, अर्जुन कहते मारो, ये निहत्था है धरती पर, अरे फिर लगा बकबक करने। युद्ध के प्रारंभ में गीता का उपदेश किया, बीच में भी करना पड़ेगा चल मार। तो साहस करके एक बार अर्जुन मारे, जब कर्ण पर बाण लगा देखा तो दूसरा बाण भी मार का। अच्छा अर्जुन गंडीवधारी क्या कर रहे हो, निहत्थे पर बाण मार रहे हो। अर्जुन फिर रुक गए कर्ण की बात सुनकर। भगवान कहते हैं अरे मार। तो कर्ण कहता अच्छा आप कह रहे हैं, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जिगे जिगे, झूठा धर्म की स्थापना करने के लिए आए। गीता में बोलते हैं कि धर्म की स्थापना करता हूं और अधर्म की सलाह दे रहे हैं। तो भगवान कहते सुन ले कर्ण कान खोलकर, धर्म अधर्म की परिभाषा, जो मैं चाहता हूं वो धर्म है और मेरी इच्छा के विरुद्ध सब कुछ अधर्म है। समझा? अरे धर्म ध्वजी संकट में पड़ने पर धर्म का ध्वजा दिखा रहा है। जी समय निहत्था अभिमन्यु मारा गया साथ साथ तुम्हारे जैसे महारथियों के बीच में, उस समय तुम्हारा धर्म कहां गया था? क्यों नहीं तुमने याद किया कि वो निहत्था है? क्या उसको मारने में तुम नहीं था? उस समय क्यों भूल गया धर्म? और जब अपने पर संकट पड़ा है तब धर्म याद आ रहा है? धर्म ध्वजी नीच, जी समय सती द्रौपदी को नग्न करने का प्लानिंग किया गया तुमने उसको वेश्या कहा था, यह धर्म है? जिस समय सोए हुए पांडवों को जलाने की योजना बनाई गई क्या तुम नहीं था? वो धर्म है? अरे धर्म ध्वजी धर्म की परिभाषा तुमको पता नहीं है। मेरी प्रसन्नता के लिए जो किया जाता है वो धर्म और मेरी इच्छा के विरुद्ध जो किया जाता है वह धर्म। और जो मैं कहता हूं जो मैं चाहता हूं वह सत्य और मेरी इच्छा के विरुद्ध सब असत्य। मारो इसको, एक गुरु के श्राप से श्रापित है, अब बुद्धि काम नहीं करेगी, तुमको इसी तरह मरना है, मारो। तब अर्जुन मारने लगा। तब वो कहता है कर्ण वास्तव में हे धर्म के ठेकेदार, हे प्रभु हे श्री कृष्ण, वास्तव में मैं अधार्मिक हूं, मैंने सती की रक्षा नहीं किया, मैंने निहत्था अभिमन्यु को नहीं रक्षा किया, इस शोक के साथ मैं शरीर छोड़ने के लिए तैयार हूं। और भगवान सूर्य अस्त हो रहे थे, वो रुक गए देखने के लिए कर्ण की गति, और भगवान सूर्य के तरफ स्मरण करके उनके किरणों के माध्यम से उनके लोक को चला गया। इसलिए कर्ण का एक नाम रश्मि रथी भी है, सूर्य के किरणों के सहारे सूर्य लोक को प्राप्त किया। तो इस तरह से धर्म और अधर्म की परिभाषा है। कभी कभी लोग सोचते हैं कैसे झूठ बोलूं, अरे दिन रात तो आप झूठ नहीं बोलते हैं, थोड़ा दो चार माला पूरा करने के लिए झूठ बोल देंगे तो क्या हो जाएगा, सत्संग में आने के लिए झूठ बोल देंगे तो क्या बिगड़ जाएगा, अरे मुझे तो याद ही नहीं आया मैं नहीं आ पाया, ठीक है अगली बार निश्चित आऊंगा, या मैं किसी विशेष काम में फंस गया इसलिए नहीं आया, झूठ बोल दीजिए। चानुमोदित निर्मम, अनुमोदन कीजिए लेकिन आसक्ति नहीं, फॉर्मालिटी में जीवन नहीं बिताना है। दिव्यम भौमम चांतरिक्षमतम वित्तम अच्युत निर्मितम, जो कुछ भी धरती में आकाश में पृथ्वी में जहां भी धन है सब अच्युत का है, भगवान का है। तत् सर्वम उपमुञ्जाना एतत् कुर्यात् स्वतो बुधा, जहां भी कुछ प्राप्त हो रहा है धन वो भगवान का है। कभी कभी लोग कहते हैं हम अपना काम धंधा करते हैं बड़े उदार भाव में है, हम किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते, लेकिन प्रभुपाद जी कहते हैं चोरों की ईमानदारी है, चोरों की ईमानदारी ऑनेस्टी कहते हैं, चोरों की ईमानदारी है। चोर लोग दो चार घर में धन चुरा कर लाए, दो चार चोर मिलकर, और कहते हैं कि देखो भाई ठीक ठीक बांटना, बेईमानी मत करना, बराबर बराबर मिलना चाहिए, सारा माल बेईमानी का और बीच में ईमानदारी आ गया। उसी प्रकार अगर कोई किसान गाला तैयार किया है, धान या गेहूं का ढेरी, और वह खलिहान से घर चला गया, कोई आया कहा आप लीजिए मैं दे रहा हूं 50 किलो आप ले लीजिए 100 किलो लीजिए, दान दे रहा है, अगर वो मालिक लौटेगा तो क्या होगा उस दाता का? उसी प्रकार के बेईमान लोग अपने को ईमानदार कहते हैं, सारा धन भगवान का और बीच में वो बैंक बैलेंस करके चुरा कर रखे हैं तो कह रहे हैं कि हमारा है। दिव्यम भौमम चांतरिक्षमतम एतत् सर्वम उपभुञ्जाना, उसको भोगना चाहिए, लेकिन एतत् कुर्यात् स्वतो बुद्ध, ऐसा हो विचार करना चाहिए कि ये सब भगवान का है, सबका इसमें अधिकार है, ज्यादा नहीं रखना चाहिए। जावत भ्रियत जठरम तावत सत्तो में देही नाम, जितना से पेट भर सके उतना ही भोजन पर किसी को अधिकार है। अधिकम यो विमन्यता, उससे अधिक जो बैंक बैलेंस करता है सस्तेनो दंड मरहती, वह चोर है, उसको दंड मिलना चाहिए। यह गृहस्थ के सामने कहा जा रहा है, बैलेंस गृहस्थ करते हैं, तो यहाँ प्रहलाद या देवर्षि नारद कह रहे हैं वो चोर है, उसको दंड मिलना चाहिए। एक गृहस्थ धर्म है, कह रहे हैं मृग उष्ट खर मर्क और ये सब चूहा खग पक्षी, ये जितने जीव है उसमें और अपने पुत्रों में कितना अंतर है। ये जो हिरण ऊंट गधा बंदर चूहा सांप पक्षी मक्खी ये पशु है, सब अपने पुत्र के समान है, सबके साथ समान व्यवहार करे। इन निर्दोष पशुओं और बच्चों के बीच वास्तव में कितना अंतर है, कुछ अंतर नहीं है। इसलिए तुर्वर्गम नात कृष्णेन भजेत गृह मेध्यति यथा देशम यथा कालम यावत दैवोपपादितम। इसलिए कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं कि ब्रह्मचारी गृहस्थ संन्यासी और वानप्रस्थी का, यदि कोई ब्रह्मचारी सन्यासी या वानप्रस्थी न होकर मात्र गृहस्थ हो तो भी उसे धर्म अर्थ और काम के लिए अधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए। त्रिवर्गम माने तीन, तीन प्रकार का वर्ग धर्म अर्थ काम, न नहीं अति किसने न, इनको प्राप्त करने के लिए अधिक परिश्रम नहीं करना चाहिए। यहां तक कि गृहस्थ जीवन में भी स्थान और काल के अनुसार न्यूनतम प्रयास से जो कुछ भगवत कृपा से प्राप्त हो जाए उसी से अपना जीवन यापन करते हुए संतुष्ट रहना चाहिए। मनुष्य को अपने आप के लिए उग्र कर्म में नहीं लगाना चाहिए। बहुत काम धंधा करने से भजन नहीं होता है। कुछ लोग कहते हैं, मूर्ख लोग, जंजाल ठीक लेकिन कंगाल ठीक नहीं। बहुत जंजाल दुकान फैक्ट्री बना लिए, पैसा तो आ रहा है लेकिन झंझट बढ़ गया, तो इसे क्या होता है, भजन नहीं होता है। यह दुकान देखना है, वो फैक्ट्री देखना है, दो चार पांच फैक्ट्री चला रहे हैं तो फुर्सत कहाँ है, कहाँ घाटा हो रहा है, कहाँ नफा हो रहा है, कैसे सामान बिकेगा, कौन जाए, इसी में टेंशन में पड़े रहते हैं। तो जंजाल तो बढ़ जाता है और कंगाली भी खत्म हो जाता है, रुपया भी आता है, लेकिन भजन नहीं होता है। इसलिए रूप गोस्वामी कहते हैं कि भजन के बाधक क्या है, अत्याहार प्रयासश्च प्रजल्पो नियमाग्रह जनसंगश्च लवल्यंच सद्भिर् भक्ति विनश्यति। अत्याहार और जरूरत से ज्यादा खाना या जरूरत से ज्यादा पैसा रुपया रखना, अप्रयासश्च किसी भी काम में ज्यादा प्रयास करना, नहीं हो रहा है छोड़ दो ना, क्या जरूरत है करने का, मरोगे नहीं पक्का है, जितना दिन का जीवन मिला है वो चलेगा, जैसे कर्म आपका प्रारब्ध है वैसे ही चलेगा, आपके प्रयास से कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए ज्यादा टेंशन नहीं लेना चाहिए। प्रभुपाद बहुत सुंदर तात्पर्य लिखते हैं, मानव जीवन में चार सिद्धांतों की पूर्ति होनी चाहिए, धर्म अर्थ काम और मोक्ष। सर्वप्रथम मनुष्य को विभिन्न विधि विधानों का पालन करते हुए धार्मिक बनना चाहिए, कुछ धर्म का आचरण करना चाहिए, तब अपने परिवार के पालन के लिए, अपने इंद्रियों के तृप्ति के लिए कुछ धन कमाना चाहिए। इंद्रिय तृप्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण है संस्कार, सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है विवाह, क्योंकि संभोग मैथुन इस शरीर की प्रमुख आवश्यकताओं में से है। नियन मैथुनादिग्रह में भी सुखम में तुच्छम, लेकिन यही सब कुछ नहीं है। बहुत सुंदर लिखते हैं, एक किसी भी जीव के लिए एक जीवन में भोजन कपड़ा के अलावा एक स्त्री संग एक आवश्यकता है। जैसे भूख का डिमांड है वैसे जनेन्द्रिय का डिमांड है स्त्री संग। तो यन मैथुना विग्रह से सुखम ही तुच्छम, लेकिन यह पशु का सुख है, बहुत तुच्छ सुख है। मैथुन यद्यपि जीवन की एक अत्यंत उन्नत आवश्यकता के रूप में लोग सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। यह भौतिक प्रवृत्तियों के कारण पशु के समान है। पशु और मनुष्य में एक प्रवृत्ति देखी जाती है, इनको स्त्री संघ की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन मनुष्य को एक वैदिक सिद्धांत के अनुसार वैवाहिक जीवन से संतुष्ट रहना चाहिए। अतिरिक्त इंद्रिय तृप्ति या जौन जीवन में शक्ति व्यय नहीं करना चाहिए। यह सुख है, भोग है, लेकिन मूर्खतापूर्ण भोग है। भगवद गीता में भगवान क्या कहते हैं, इन्हीं संस्पर्श जा भोगा दुख जो नवते आद्यंतवंत कौनते न ते सूरमते बुधा। कहते हैं कि सारा भोग, बहुवचन में कहते हैं, भोग में एक नंबर पर रखे हैं स्त्री संग। यन मैथुनादि गृह में भी सुखम इतुक्षम, उसी तरह भगवान कहते हैं कि यही संस्पर्शजा भोगा, जो भोग स्पर्श आलिंगन चुम्बन और संग से प्राप्त होता है उसको संस्पर्शज भोग कहते हैं, स्त्री भोग। यही संस्पर्शजा भोगा एक नंबर में इसको रखते हैं भगवान। इसके बाद देखना, सुनना, खाना, सुनना, ये सब भोग है। भोगा कहकर बहुवचन में सबको कह दिए, लेकिन स्त्री सुख को प्रथम कहते हैं। संस्पर्शजा भोगा दुख जो नवते, ये दुख देने वाला है, दुख का जन्म देता है और टेम्पररी है, परमानेंट नहीं है। आद्यंतवंत कौनतेय, यह प्रारंभ तो होता है लेकिन तुरंत नष्ट भी होता है। आद्यंतवंत कौनतेय न ते सु रमते बुधा, इसलिए बुद्धिमान लोग इसमें नहीं रमते। न ते सु रमते बुधा, इसमें बुद्धिमान नहीं रमते, मतलब रमने वाले डल माइंडेड है, मूर्ख है। इनडायरेक्ट कर रहे भगवान, बड़े शब्द है ना, मूर्ख सीधे नहीं बनाते हैं, लेकिन रमने वालों को मूर्ख इनडायरेक्ट बना रहे हैं। न तेसु रमते बुधा, इसमें बुद्धिमान नहीं रमता, मतलब रमने वाला मूर्ख है। यह है भगवान की भाषा, बोलने का शैली, यह तुच्छ है। और प्रहलाद महाराज कहते हैं कि ये स्त्री सुख, यन मैथुनादिग्रह में भी सुखम तुच्छम, कंडोयने न करो रिव दुख दुखम, तृप्यंत नेह कृपणा बहु दुख भाजा, कंडो तिवन मन सिजम विसहित धीरा। हे नृसिंहदेव, नृसिंहदेव की स्तुति में सात सातवां स्कंद के नौवां अध्याय के 45 नंबर श्लोक में प्रहलाद महाराज कहते हैं, हे नृसिंहदेव, ये जो मैथुन आदि गृह में भी सुखम ही तुच्छम, घर गृहस्थी में जिनकी बुद्धि लगी है उनके लिए यह जो स्त्री संग आदि सुख है बड़ा तुच्छ है, बहुत थोड़ा है, लेकिन उसको लोग सहते हैं। जो धीर है, आपके जो भक्त हैं, उनको पता है, क्या पता है, कंडोयने न करे रिव दुख दुखम, खुजली की तरह, खुजलाने में तो बड़ा मजा आता है लेकिन घाव बढ़ जाता है। कहते हैं वहां खुजली खुजलावे स्वर्ग के मजा पावे, खुजलाते समय तो बड़ा आनंद आता है लेकिन नाखून लगने पर घाव बढ़ जाता है। इसलिए धीर व्यक्ति क्या करता है, तिप्पंत में है कृपणा बहुत दुख भाजा, एक कृपणा, मूर्ख लोग इस सुख के फेर में पड़कर दुख मोल ले लेते हैं। कंडू तिवन मनसिजा, खजली की तरह मनसिजम, जो काम का वेग है उसको विषहित धीरा, उसको धीर व्यक्ति सह लेता है, कोई जरूरत नहीं, खुजलाएंगे नहीं। अगर कभी खुजलाता है तो कपड़ा लगा कर सहला लेते हैं, नाखून नहीं लगाते, थोड़ा सा सहने से बच जाते हैं, यदि खुजला देते हैं तो बढ़ जाता है। उसी प्रकार जो मैथुन आदि सुख के फेरे में पड़ता है वो ज्यादा दुख मोल ले लेता है, बहुत ज्यादा। एक घर गृहस्थी की जो व्यवस्था है वर्णाश्रम आदि विवाह आदि का, वो एक शास्त्रीय वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था है, उसका फाइनल अर्थ है इन भोगों से बचना। जैसे डैम बनाया जाता है नदियों में, तो डैम का लक्ष्य होता है पानी को सुरक्षित रखना, लेकिन बरसात में जब ज्यादा वर्षा हो जाता है, बरसात हो जाती है तो जो ओवर पानी है उसको निकलने के लिए एक छलका बनाया जाता है डैम में, कि डैम को तोड़े ना उधर से निकल जाए, जो ज्यादा हो रहा है उसको निकलना चाहिए। तो बहुत ज्यादा मात्रा में निकलने लगता है तो उसको देखकर कोई कह देगा ये क्या डैम बनाया है, सारा पानी बह रहा है। तो बहने की व्यवस्था क्यों बनाया, इसको बांध कर रखता तो ज्यादा पानी अटता इसमें, लेकिन नहीं, डैम टूट सकता है, इसके लिए व्यवस्था है छलका। उसी प्रकार मानव जीवन का 75% जीवन बिना स्त्री का है, लेकिन डैम टूट न जाए इसलिए 25% की स्त्री रख दिया गया है। वह अवैध कार्यों में न लग जाए इसलिए जवानी के अवस्था में उसको स्त्री की व्यवस्था दे दी गई है, 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन, बीच में 25 वर्ष गृहस्थी, इसके बाद वानप्रस्थ और लास्ट में संन्यास। तो जिसका 75% बिना स्त्री का जीवन व्यवस्था किया गया तो उसका क्या लक्ष्य है, लक्ष्य तो यही है कि पानी सुरक्षित रखा जाए, जीवन कृष्ण में रखा जाए, उसमें नहीं फंसाया जाए। एक बार रामकृष्ण परमहंस के एक पत्रिका में पढ़ा था, बहुत पहले विद्यार्थी जीवन में, कि एक व्यक्ति उनके सत्संग में आता था, वो बीड़ी पीता रहता था, किनारे बैठता था, बार बार बीड़ी पीता था, वो देखते थे, कथा में भी पीता था। तो एक दिन रामकृष्ण परमहंस बुलाए, कहे आप कितना बीड़ी पीते हो, तो कहा कि गिने तो नहीं है, तो कहते बंडल में कितना आता है, तो कहते इतना, कितना बंडल, तो 4-5 बंडल तो पी ही जाते हैं, 10-10 होता है, कल गिन कर बताइएगा। तो कहे ठीक है, तो कहा कि 70-75 बीड़ी पी जाते हैं 24 घंटा में। तो कहे कि आप सत्संग में क्यों आते हैं, तो आपकी कथा मुझको बहुत अच्छी लगती है। अच्छा, तो हमारी कथा का दक्षिणा कुछ देने को सोचे हैं, तो कहे नहीं, तो जो कथा करता है उसको कुछ देना चाहिए। तो हाँ ठीक है, कल लाएंगे। ना ना, लाना नहीं है, आप हमारे दक्षिणा के लिए कल एक बीड़ी कम पीजिएगा। तो कहा अच्छा ठीक है। दूसरा दिन कहे क्या एक बीड़ी छोड़ने से कुछ दिक्कत हुआ, कहे ना, तो कल दो छोड़ दीजिए, देखिए क्या दिक्कत है। ऐसे ऐसे रोज रोज छोड़वाते छोड़वाते 2 महीना में 60 बीड़ी छोड़ दिया, आज 2.5 महीना में टोटल, अब कहा कि 2 पीता हूं सुबह शाम। तो कहे कि उसको भी छोड़कर देखिए क्या होता है, कुछ नहीं, धीरे धीरे छोड़वा दिए। वो नहीं कहे कि अब बीड़ी मत पीजिए, थोड़ा छोड़ने के लिए कहे, एक सिस्टम है, प्रीचिंग का स्टाइल है। मृगारी को देवर्षि नारद कहे कि आप जिस पशुओं को मारते हैं उसको एक बार में ही खत्म कर दीजिए, अधमरा मत कीजिए। तो पूछता है इसे आपको क्या मिलेगा, तो कहते जीव दुख पाते हैं ना, वैसा आपको भी दुख होगा, उसको समझा दिए। तो उस समय कह रहा था कि जब जीव छटपटाते हैं मरते हैं तो मुझको बड़ा आज मजा आता है, धड़ और तुम्हारा जीव जब धड़ धड़ करे तभी तो आनंद मोर बाढ़े अंतर है। लेकिन देवर्षि नारद उसको ऐसा प्रीचिंग किए कि वह चींटी भी पैर से नहीं दबाना चाहता था, इतना बदल गया। तो इस तरह से जो एक एक दो दो चार चार बीड़ी पीने की छूट दिया गया रामकृष्ण परमहंस के द्वारा, इसका मतलब उसको छुड़ाना है। उसी प्रकार हमारे वेद शास्त्र इन भोगों से छुड़ाने की व्यवस्था किए हैं, डैम में छलका दिए हैं घर गृहस्थी, यही जीवन का लक्ष्य नहीं है। तो आगे से लोग प्रभुपाद कहते हैं कि जहां तक आर्थिक विकास की बात है, यह उत्तरदायित्व वैसों गृहस्थों पर छोड़ देना चाहिए, व्यापारियों पर। मानव समाज 2 वर्णों और आश्रम में विभाजित है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचर्य गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, ये वर्ण और आश्रम है। गृहस्थों के लिए आर्थिक विकास आवश्यक है, ब्राह्मण के लिए वेदाध्ययन शास्त्रों का अध्ययन जजन जाजन इसी से संतुष्ट रहना चाहिए। ब्राह्मण को एक कार्य पारिश्रमिक के लिए नहीं करना चाहिए कि हम इसके बदले में कुछ ले, किंतु जिस व्यक्ति को यह शिक्षा देते हैं वे अगर कुछ दान देता है तो उसको ले सकता है। जहां तक क्षत्रियों का संबंध है, पृथ्वी का पालन करते हैं राजा है, और भूमि वैश्यों में वितरण होना चाहिए। जो कृषि को रक्षा आदि व्यापार आदि करते हैं, शूद्रों को सेवा का कार्य करना चाहिए, जैसे वस्त्र निर्माण में मजदूर का काम, बुनकर, लुहार, सुनार इत्यादि व्यवसायिक कार्यों में लगना चाहिए। फिर अन्न उत्पादन करने में कठिन परिश्रम में शूद्रों को लगाना चाहिए। वे एक विभिन्न व्यक्ति पर कर्तव्य है जिन्हें जीविकोपार्जन के लिए मनुष्यों को करना चाहिए और इसी प्रकार मानव समाज को सरल होना चाहिए। किंतु इस समय प्रत्येक व्यक्ति तकनीकी के विकास में लगा हुआ है, जिसे भगवद गीता में उग्र कर्म कहते हैं। सब लोग फैक्ट्री चलाना चाहते हैं, व्यापार करना चाहते हैं। यही उग्र कर्म मानव मस्तिष्क के अंदर क्षोभ उत्पन्न करता है। मनुष्य नाना प्रकार के पापपूर्ण कार्यों में व्यस्त है, जैसे कसाई घर चलाना, मदिरालय चलाना, सिगरेट बीड़ी की फैक्ट्रियां खोलना, इंद्रिय भोग के लिए लोग रात्रि क्लब और अन्य प्रतिष्ठान खोलकर अपने को पतित बनाते जा रहे हैं। इसमें जीवन बर्बाद हो रहा है। निसंदेह इस सारे कार्यों में गृहस्थ फंसते हैं। अतः यहाँ पर अपी शब्द का प्रयोग हुआ है। अपी शब्द इस श्लोक में बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ कहा है गृह मेध्यपि, गृहस्थ व्यक्ति भी ऐसा करे, जथा देशम जथा कालम यावत दैवोपपादितम। गृहस्थ व्यक्ति भी ज्यादा परिश्रम न करे। कहते हैं आध्यात्मिक जीवन में प्रगति का अतिरिक्त कुछ नहीं करना चाहिए। इसका अर्थ यह हुआ कि सारी जनसंख्या का 3/4 लोगों को इंद्रिय तृप्ति छोड़कर सबको मात्र कृष्ण भावना की प्रगति में लगना चाहिए। केवल 1/4 जनसंख्या को गृहस्थ होना चाहिए और उसे भी सीमित इंद्रिय तृप्ति के नियमों के अनुसार रहना चाहिए। गृहस्थों, बालप्रस्थों और ब्रह्मचारियों और सन्यासियों को कृष्ण भावना भावित बनने में सारी शक्ति लगा देनी चाहिए। इस प्रकार की सभ्यता दैव वर्णाश्रम कहलाती है। कृष्ण भावना में आंदोलन का एक उद्देश्य दैव वर्णाश्रम की स्थापना करना है, तथा कथित वर्णाश्रम को प्रोत्साहित करना नहीं, जो मानव समाज को वैज्ञानिक विधि से व्यवस्थित प्रयासों के अनुसार नहीं चलाती। यह है प्रभुपाद का तात्पर्य। बहुत सुंदर प्रवक्त लिखते हैं, समझाना चाहते हैं कि लोगों को ज्यादा परिश्रम नहीं करना चाहिए। कुछ लोग व्यापारी वर्ग को लगना चाहिए इसमें, लेकिन काम चल रहा है तो ज्यादा परिश्रम नहीं करना चाहिए। और एक बार जब नेहरू जी प्राइम मिनिस्टर थे तो विदेशी स्टाइल में जीने की प्रचार करते थे। कहते थे मरने जीने की कला सीखो, खूब ठाट से पहन, अच्छा कपड़ा पहनो, दिखावा खूब करो, दम। तो भाई जी ने उनका विरोध किया, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी। अपना एक लेख लिख कर गीता प्रेस से एक पत्रिका निकलता है कल्याण, उसमें उन्होंने नेहरू जी के इन विचारों का विरोध किया। कहे कि नहीं, जीने की कला नहीं सीखना है इस संसार में, मरने की कला सीखो। क्योंकि जीना कहां है कि कला सीखोगे, सीखने में ही जीवन बीत जाएगा, फिर मर जाओगे। यहां तो जीवन का लक्ष्य मृत्यु है, तो मरने की कला सीखना है ना। मरने की कला सीखने का मतलब सब कुछ छूट जाएगा, जो कमा कमा कर 10-10 मकान बना रहे हो सब छूट जाएगा, बैंक बैलेंस छूटेगा। इसलिए मरने की कला सीखो। मरने की कला सीखने का मतलब कि बिना किसी को सूचना दिए वृंदावन चले जाओ, जहां सत्संग कथा हो रहा है वहां चले जाओ, फोन ऑन कुछ नहीं करना है, किसी को बताना ही नहीं है। 10-15 मरकर भजन करो, खूब जम कर, टेंशन रहित, और फिर आकर देखो क्या क्या बिगड़ा है आपके मरने से। मृत्यु का अभ्यास है, तो मृत्यु का अभ्यास है बिना फैमिली मेंबर को सूचित किए भजन करो, जाकर खूब 64 माला जप किए आनंद से, कोई फोन नहीं, कोई सूचना नहीं, कैसे दुकान चल रहा है, कैसे फैक्ट्री चल रही है, कैसे स्त्री बच्चे हैं, कोई टेंशन मत लो, भजन करो। फिर आने पर लोग कहां गए थे, तो हाँ ठीक है थोड़ा सा भजन करने गए थे, तो कुछ नाराज होंगे, कुछ डांटेंगे, तुकाराम जी की तरह मरते रहो। तो पांडुरंगा, स्त्री गाली देती थी, वो बोलते थे पांडुरंगा विठल। तो इस तरह से थोड़ा सा बोलेंगे, लेकिन आप देख लोगे कि आपके मरने से क्या क्या बिगड़ा। फाइनल में तुम्हें तो देखने को भी नहीं मिलेगा। क्या हुआ, झूठे लोग पाखंड करते हैं, इनके बिना काम नहीं चलेगा, इनके नहीं चलेगा, ऐसा नहीं होता है। चलाने वाला दूसरा है, बीच में मूर्खतापूर्ण मानसिकता से मर रहे हैं। हमारे गुरु महाराज एक उदाहरण देते हैं कि एक घोड़ा पर एक व्यक्ति बहुत सामान लाद कर उस पर बैठा भी था, दूसरा देखकर कहा भाई इतना लोड भी लादे हो और बैठे हो, ये भी जीव है ना, इतना भार लाते हो। और तो कुछ दूर जाकर सोचा कि जरूर इस पर ज्यादा भार है, तो 20 किलो का गट्ठर अलग बनाया और सामान तो घोड़े पर रखा, पहले से था, 20 किलो अलग किया और उसको अपने सिर पर लेकर उस घोड़े पर बैठ गया। सोच रहा है कि 20 किलो मैं ढो रहा हूं, लेकिन घोड़े के भार में कोई कमी नहीं हुई। उसी प्रकार उस मूर्ख घुड़सवार की तरह हमारी मानसिकता है। सबके पालन पोषण की जिम्मेवारी भगवान को है, वो करते हैं सुहृदम सर्वभूतानाम, लेकिन हम उस मूर्ख घुड़सवार की तो 10 फैमिली मेंबर का मेंटेन हम कर रहे हैं। बोक्का कहेगा मूर्ख, तुम्हारे मरने के बाद सभी परिवार के लोग मर जाएंगे, मरेंगे, कितने घर के गार्जियन मर गए, ग्रेट इंडिया मेरा भारत महान कहने वाले चले गए, क्या नहीं चल रहा है परिवार, नहीं चल रहा है समाज, चल रहा है इसलिए कि चलाने वाला कोई दूसरा है, वो है, वो चला रहा है, इसलिए इतना उद्विग्न नहीं होना चाहिए, चिंता करना चाहिए कि लोग भजन नहीं कर रहे हैं, उनको भजन करने में लगाना चाहिए। प्रहलाद महाराज कहते हैं हमको नरक से कोई भय नहीं है, नहीं वो तुझे पर दूरत भय तरणा, क्यों क्यों आप उद्विग्न नहीं है, क्योंकि मैं आपकी लीला कथा को गाता रहता हूं, नहीं वो तुझे पर दूरत भय तरणा तद वीर्ज गायन महामृतमग्न चित्त है, मैं आपकी लीला कथा को कहता हूँ सुनता हूँ इसलिए मैं उद्विग्न नहीं हूँ, बैतरनी से भय नहीं है, नरक नहीं जाऊंगा। अच्छा, या इतना ऐसा निश्चिंत व्यक्ति तो मैं देखा नहीं प्रहलाद, नहीं प्रभु मुझे भी एक टेंशन है, क्या अब क्या टेंशन है, नरक से भय नहीं है, लेकिन सोचे ततो विमुख चेता से इंद्रियार्थ माया सुखाय भरमुद बहतो विमूढ़, लेकिन मुझको उन मूर्खों के लिए उन गधों के लिए चिंता है। प्रभुपाद मूढ़ का गधा करते हैं, जो माया सुख के लिए भाग उद्वहन करते हैं, भाग ढोते रहते हैं, उन मूर्खों के लिए मुझे चिंता है कि आपका भजन नहीं करते हैं, आपसे विमुख रहते हैं और भाग ढोते रहते हैं। विमुख चेतस इंद्रियार्थ है, इंद्रियों के अर्थ के लिए भाग ढोते हैं, ऐसे लोगों को कैसे आपको भक्ति में लगाया जाए, ये चिंता का विषय है। तो भगवान नरसिंहदेव कहे बहुत से विरक्त लोग हैं, लगाएंगे ना, कहते ना संसार में ऐसे लोग हैं, प्रायण देव मुनया सो विमुक्ति कामा मौनम चरण तिविजने न परार्थ निष्ठा, बहुत से ऐसे लोग हैं जो घर छोड़ दिए हैं, जाकर हिमालय के गुफा में मौन धारण कर लिए हैं, बोलते ही नहीं, तो क्या उद्धार करेंगे, बिजने न परार्थ निष्ठा, दूसरे की चिंता नहीं है, आचार करे न कह ना करे प्रचार, बहुत से ऐसे लोग हैं आचरण तो करते हैं प्रचार नहीं करते हैं। और एक दूसरा ग्रुप है कि दूसरे को उपदेश खूब करते हैं स्वयं नहीं करते, प्रचार करे न कह ना करे आचार, पर उपदेश कुशल बहुत तेरे, दूसरे को उपदेश करने में बहुत कुशल होते हैं, सभी लोग गुरु होते हैं, लेकिन स्वयं आचरण नहीं करते। आचार प्रचार यही दो ही कार्य, तुम्ही सर्व गुरु तुम्ही जगत है राज, जिनके जीवन में आचरण और उपदेश दोनों है वह सर्वश्रेष्ठ आचार्य है, वह गुरु है, ये सनातन गोस्वामी कह रहे हैं हरिदास ठाकुर को। तो वैष्णव के जीवन में स्वयं आचरण होना चाहिए, तद वीर्ज गायन महामृतमग्न चित्त, अपने स्वयं करना चाहिए फिर उपदेश करना चाहिए। प्लेन यात्रा करते समय जब सीट पर बैठते हैं तो सर्वप्रथम सावधानियां बतलाई जाती है, अपना बेल्ट बांध लो, इस तरह बांधा जाएगा, दूसरा नंबर ऑक्सीजन के अभाव होने पर ऑक्सीजन मास्क आपके सामने आएगा, उसको सबसे पहले पहनिए, ऑक्सीजन की कमी महसूस हो रहा है तो ऑक्सीजन लेने के लिए पहनिए, तब हेल्प कीजिए। ऐसा क्यों कहा जाता है, मान लीजिए आपका छोटा बच्चा 5 साल का है, पत्नी है, उसको नहीं समझ में आया, उसको पहनाना है, तो सावधानी के पहले पहनो तब पहनाओ, हो सकता है उसी के हेल्प में आप भी मर गए तो, ऑक्सीजन की कमी हो तो सबके लिए हो गया ना, सबको ऑक्सीजन की कमी हो गई, तो आप हेल्प करने के मूड में हैं, तो पहला कर्तव्य है कि पहले आप ऑक्सीजन लेना प्रारंभ कीजिए, तब दूसरे का हेल्प कीजिए। कर ही नहीं सकते आप, अगर आपको कमी है, उसको कमी है, सबको कमी है, तो जब आप बिना ऑक्सीजन अपने नाक में लगाए दूसरे को हेल्प करना चाहेंगे, नहीं कर सकते, आप भी मर सकते हैं। इसलिए कर्तव्य है पहले लगाना। उसी प्रकार स्वयं आचरण तब प्रचार। इसका कारण यह है कि लोग सुनते कम है, देखते ज्यादा है। भाषण तो कम ध्यान देते हैं लेकिन आचरण खूब देखते हैं। कि महात्मा जी मंदिर में बड़ा लेक्चर दे रहे थे लेकिन दुकान पर चाट चाट रहे हैं, समोसा खा रहे हैं। ये अर्पित है, भगवान को भोग लगा है। अरे तो इसके कथनी और करनी में बहुत अंतर, नहीं प्रभाव पड़ता। इसलिए भक्तों को ये सब आचरण में होना चाहिए। और इन सब बातों के अनुसार वैदिक व्यवस्था है दैव वर्णाश्रम, जिसको प्रभुपाद जोर दे रहे हैं। तो इन सब बातों के साथ श्रील प्रभुपाद जी चाहते हैं कि लोग इस रहस्य को समझें। देवर्षि नारद बहुत उत्साह के साथ बतला रहे हैं, आगे भी अभी कई श्लोकों में बताएंगे कि जितना कम मेहनत में काम हो जाए उतना ही काम करना चाहिए, जितना से काम चल सके। हम लोग झारखंड प्रीचिंग के समय एक उदाहरण देते थे, मुझको यह प्रिय उदाहरण है, आ गया याद तो बता देता हूँ। वन में रहने वाले लोग की जीविका है जंगल के लकड़ी या वहां के जो भी फल है उसको बटोरते हैं, महुआ प्यार और सब सब लकड़ी काटते हैं, लकड़ी बेचते हैं। तो वो लोग बहुत दक्ष होते हैं। अगर काम की लकड़ी किसी झाड़ी के अंदर दिख गई जहां पर कुठारी नहीं पहुंच सकता, तो बड़ी बुद्धिमानी से उस लकड़ी को काट कर निकाल लेते हैं। और कुछ लोग जो नहीं जानते हैं वो क्या करते हैं कि लकड़ी तो दिख गया काम लायक, सीधा 20-25 फीट ऊंचा, एकदम गोल बढ़िया, लेकिन वहां झाड़ी है तो झाड़ी साफ करते हैं पहले। झाड़ी साफ करने में उनको दिन बीत गया, लकड़ी तक पहुंचे ही नहीं। दूसरा दिन आकर भी इसी तरह सफाई करते हैं। जो तेज तराक है, जानकार व्यक्ति है, वो झाड़ी नहीं साफ करता, वो किसी तरह अंदर घुसता है, अपने घुसने के लिए जगह बना लेता है वहां, और वहां कुल्हाड़ी को जो फंसा रहा है उस डाड़ियों को काटकर खींच देता है अलग, और फिर काटता है। काटने के बाद जब वो गिरता है दूसरे पेड़ों पर झाड़ियों में, तब उसी पेड़ पर चढ़कर आसपास फंसाने वाले डाड़ियों को काटता है, एकदम क्लियर कर देता है, और इसके बाद उसको धीरे से जगह बनाकर खींच लेता है बाहर, और एक दिन में 2-4-5-10 लकड़ी काट लेता है। और नहीं जानकार व्यक्ति झाड़ी साफ करने में ही रह जाता है। तो हमारे जीवन का गोल है, लक्ष्य है कृष्ण प्रेम, कृष्ण भक्ति, और फिर झाड़ियां है भूख प्यास कपड़ा मकान, इसी को जुटाने में जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए, गोल तक पहुंचना चाहिए। कृष्ण भक्ति हो जाए, बिना झाड़ी काटे हो जाए तो क्या दिक्कत है। कुछ लोग कहते हैं ये लोग साधु लोग तिलक कंठी लगाकर खाने की जुगाड़ किए हैं, खाने पीने को मिलता है। एक बार बस में जा रहे थे तो कुछ लोग ऐसे बोल रहे थे, साथ में महाराज श्री भी थे, तो जब महाराज थे तो हम लोग नहीं बोल पाते थे, बहुत बोलता था, तो महाराज कहे कि अच्छा साधु लोग खाने के लिए काम करते हैं और आप लोग उपवास रहने के लिए काम कर रहे हैं। तो कहा कि नहीं, अगर भोजन ना मिले तो आपका भजन नहीं होगा। ठीक, बहुत बढ़िया, तो भोजन मिल जाने के बाद भजन करना चाहिए ना। भोजन मिल गया तो भजन करना चाहिए। कहता कि ये सिद्धांत है कि बिना भोजन कैसे है, बिना बिना भूखे भजन हो गोपाला ले लो अपनी कंठी माला। तो ठीक है, पेट भर गया तो भजन होना चाहिए ना। तो आप लोग बहाना मत कीजिए, भजन ही लक्ष्य है। खाने के लिए नहीं जीना चाहिए, जीने के लिए खाना चाहिए। प्रथम स्कंद के दूसरे अध्याय में सूत गोस्वामी कहते हैं कि यह जीवन भजन के लिए है, इंद्रिय भोग के लिए नहीं है। देखिए कामस्य न इंद्रिय प्रीति लाभो जीवित जावता जीवस्य तत्व जिज्ञासा नार्थो यस्य है कर्म भी। कहते हैं कि इंद्रिय तृप्ति के लिए खाने पीने के लिए जीवन नहीं है, जीवन है तत्व जिज्ञासा के लिए, भक्ति के लिए, भजन के लिए। अगर यह नहीं हुआ तो श्रम है वही केवलम। भगवान की कथा में रुचि नहीं हुई, जप में नहीं हुआ, तो चाहे कितना हो धर्म का ढोंग कर लो। धर्म समुषित पुनः विश्वक्षण कथा सुजत नोत्पादे यदि रतिम श्रम है वही केवलम। केवल परिश्रम बेकार चला गया। इसलिए मनुष्य जीवन की सार्थकता खासकर गृहस्थी का धर्म बतला रहे हैं कि ज्यादा हाय हाय नहीं करना चाहिए, काम भर कमाना चाहिए और केवल भजन करना चाहिए। जथा देशम जथा कालम जावत दैवोपपादितम। दैवोपपादितम का मतलब भगवत कृपा से, भगवान के कृपा से जो कुछ मिल जाए उसमें संतोष रहना सीखे। ये संतोष धर्म सन्यासी को नहीं सिखा रहे हैं, गृहस्थ को सिखा रहे हैं। सन्यासी को तो संतुष्ट रहना ही है, लेकिन गृहस्थों को भी हाय हाय नहीं करना है, ये सिखा रहे हैं। ज्यादा परिश्रम नहीं करना है, भजन करना है, ठीक है। तो इस श्लोक का यह लक्ष्य है और आप लोग कृपा करके इसको स्वीकार कीजिए और अपने जीवन को कृष्ण भावना भावित रखिए। हरे कृष्ण, जय श्री कृष्ण। ठीक है, क्या जिज्ञासा है?
हरे कृष्ण महाराज, अपने शुरुआत में जैसे बोला था कि चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को जो शिक्षा दिया कि वर्णाश्रम धर्म का अगर कोई सटीक से भी पालन करे फिर भी अगर कृष्ण भजन नहीं करता तो वो रौरव में पड़ा रहेगा, फिर प्रभुपाद ये दैवी वर्णाश्रम के ऊपर इतना स्ट्रेस क्यों देते हैं हमारे प्रभुपाद?
हाँ देखिए, दैवी वर्णाश्रम माने स्पिरिचुअल आध्यात्मिक वर्णाश्रम की बात करते हैं, प्राकृतिक वर्णाश्रम की बात प्रभुपाद नहीं करते हैं। वहां दैवी शब्द लगाए हैं, दैवी माने दिव्य, दिव्य और दिव्य माने अध्यात्म स्पिरिचुअल अप्राकृत। तो अप्राकृत सुख प्राप्त करने के लिए उस तरह की वर्णाश्रम होना चाहिए। ये जो वर्णाश्रम मनु महाराज ने जिस वर्णाश्रम की स्थापना किया, जिसको स्मार्त करते हैं स्मृति ग्रंथों में है, तो इस वर्णाश्रम में ठीक से वर्णाश्रम का लक्ष्य निर्धारित नहीं कर पाए। लक्ष्य तो उनका यही है, व्यास जी भी यही कोशिश किए हैं कि जैसे जैसा जिसका स्तर है उसी स्तर से विकास करे, जो जहां से है वही अध्यात्म की ओर जाए। लेकिन स्वभाव रक्त से महान व्यतिक्रम, स्वभाव से लोग आसक्त हो जाते हैं और उसी तरह का कर्म बतला दिया जाए तो लोग उसी में आसक्त हो जाते हैं। इसलिए देवर्षि नारद व्यास जी को डांटे हैं कि आपने खुलकर भगवत धर्म का उपदेश नहीं किया, लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार उसमें आसक्त हो गए। तो लोगों का स्वभाव है ना, अगर आप छूट दे दीजिए कि अमावस्या के दिन मांस खा सकते हैं तो अब रोज काटने लगेंगे, मांस देवी को अर्पण किया जा सकता है यह बता देंगे तो लोग रोज मांस खाने लगेंगे। यह बताइए कि सबके जीवन का लक्ष्य भगवान है, इस पर हाईलाइट करना चाहिए। तो प्रभुपाद जी देवर्षि नारद के अनुसार जो वर्णाश्रम की व्यवस्था है उस पर जोर दे रहे हैं कि जो जहां है वहीं से भजन करे। देखिए एक व्यवस्था है सीढ़ी से ऊपर जाया जाता है, एक व्यवस्था है लिफ्ट से, बटन दबाइए पांचवें महल्ला पर चला जाएगा अपने आप। तो उसी प्रकार ये जो वर्णाश्रम है सीढ़ी की व्यवस्था है और दैव वर्णाश्रम लिफ्ट है, एकदम सीधे जिस पर जाना है वहां जा सकते हैं। दैवी वर्णाश्रम माने सनातन नित्य धर्म के अनुसार चलना, उस जीवन का लक्ष्य स्वर्गादि सुख नहीं होता है उस वर्णाश्रम का, उसका लक्ष्य भगवत धाम भगवत प्रेम होता है। तो भगवत प्रेम को लक्ष्य करके जो वर्णाश्रम की व्यवस्था किया गया उसको दैव वर्णाश्रम कहते हैं। और जो स्वर्गीय सुखों का प्रलोभन देकर वर्णाश्रम की व्यवस्था किया गया वो है स्मार्त वर्णाश्रम। यह अंतर है कि आप ऐसे करोगे तो स्वर्ग मिलेगा, तो जो भोग भोग रहे हैं भारत में पता चला कि अमेरिका में बेटर भोग है तो वहां जाना चाहते हैं, आप फिर पता चला कि स्वर्ग में ज्यादा है दान देने से तो स्वर्ग जाना चाहते हैं। तो भोग की झंझट खत्म नहीं हुआ ना, भोग की प्रवृत्ति नष्ट कर देना दैव वर्णाश्रम का लक्ष्य है। कोई जिज्ञासा नहीं है, समय हो गया, ज्यादा ज्यादा देर होने पर जिज्ञासा होती है कब खत्म होगा, तो वो जिज्ञासा तो सबके मन में हो ही रहा है, तो अब खत्म हो गया। हरे कृष्ण।